ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो ग्रंथरा श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 4 अध्याय 28 अध्याय 28 अच्छा 28 और श्लोक संख्या 4। अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। आप लोग हमारे साथ दोहराएंगे। तयोपभुज्यमानं वै यवनाः सर्वतो दिशं द्वार्वी प्रवस्य सुभ्रसं प्रादयन् सकलां पुरी तयोपभुज्यमानां वै यवनाः सर्वतो दिशं द्वार्वी प्रवस्य सुभ्रसं प्रादयन् सकलां पुरी तया कालकन्या द्वारा उपभुज्यमानं अधिकृत वै निश्चय ही यवनाः यवनगण सर्वतः दिशं सभी दिशाओं से द्वारवी द्वारों से प्रविश्य घुसकर सुभ्रसं अत्यधिक प्रादयन कष्ट देते हुए सकलां सर्वत्र पुरी नगरी में। अनुवाद और तात्पर्य अवेचणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, जब कालकन्या ने शरीर पर आक्रमण किया तो यमन राज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस आए, फिर वे सभी नागरिकों को अत्यधिक कष्ट देने लगे। तात्पर्य, शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुख, गुदा और सीसन। जब मनुष्य को बुढ़ापा सताता है तो शरीर के विभिन्न द्वारों पर रोगों का आक्रमण होता है। उदाहरणतः आंखों की ज्योति कम पड़ जाती है जिससे चश्मे की जरूरत पड़ती है, कानों से भी कम सुनाई पड़ता है, अतः सुनने के लिए सहायक यंत्र की जरूरत पड़ती है, नथुने कप से भर जाते हैं और मनुष्य को सूंघने वाली अमोनिया की सीसी रखनी पड़ती है। रोग उसका निदान भी दिए हैं जिनको, जो बीमारियां देख लो अपने, तो अमोनिया की सीसी रखनी पड़ती है। इस प्रकार मुख के भीतर दांत ठीक से चबा नहीं सकते जिससे नकली दांतों की आवश्यकता पड़ती है। गुदा भी कष्ट देने लगती है और ठीक से सोच नहीं हो पाता, कभी कभी एनीमा लेना पड़ता है। मूत्र ठीक से भी पास न होने के कारण कभी कभी सर्जिकल नली व्यवहार में लानी पड़ती है। इस प्रकार से सैनिकों ने पुरंजन की नगरी के विभिन्न द्वारों पर धावा बोल दिया। इस प्रकार बुढ़ापे में शरीर के सभी द्वार रोगों से पूर्णतया अवरुद्ध हो जाते हैं और मनुष्य को अनेक औषधियां तथा शल्क उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानं जन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांच। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रश भान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं। यम प्रवजन्त मनुपेत उपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाब पुत्रे तितन तया तर्वो अविनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः भूतैरमहद्वे पुरा इमं विभो निर्मायस्येते यदमूष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकं सोलंकर शिष्ट भगवान वचंसि मे सोलंकर शिष्ट भगवान वचंसि मे हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति है। तो किस प्रकार जो पुरंजन था तो पुरुष था, लेकिन दूसरे जन्म में उसको कैसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है, तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर बड़ी ही विस्तार से चर्चा की गई है। और अभी इसकी जो शुरुआत हो रही है पुरंजन के ऊपर काल कन्या का आक्रमण, तो यहाँ पर हम सुन रहे हैं, कई दिनों से कई श्लोकों में हम सुन चुके हैं कि किस प्रकार काल कन्या पुरंजन नगरी के ऊपर आक्रमण करती है और काल कन्या के जो भाई है यवन राज, जिसको भाई बनाया है, उसने यवनों की सेना दे दी है उसके साथ साथ में, और अपना भाई छोटा भाई है वो भी उसके साथ में है। तो यवनों की सेना कौन है? बीमारियां, करेक्ट। जितनी भी बीमारियां हैं वो सब यवन राज की सैनिक हैं, ये सब काल कन्या के साथ में रहेंगे। जहां काल कन्या रहेगी ये सैनिक जरूर रहेंगे। और दूसरा प्रज्वार, चंडवेग जिसको बोल, प्रज्वार अर्थात इसका भाई, फिर उसको क्या करता है जब जरूरत पड़ती है, बाद में जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, फिर उसके ऊपर ज्वर के रूप में प्रवेश करता है। प्रज्वार मतलब प्रकृष्ट, जो चंडवेग जिसको बोला गया पिछले उसमें, चंडवेग के रूप में जो है आक्रमण करता है। तो इससे क्या होता है कि जो नगरी है, इतनी सुंदर नगरी जिसके अंदर सारे भोग विलास की सामग्रियां भरी पड़ी थी, जीवात्मा जिनका बड़े आनंद से भोग कर रहा था, लेकिन इस बात को भूल गया कि भोग हमेशा के रहने वाले नहीं है, ये हमेशा किसी का ये भोग साथ देने वाले नहीं है। जितने भोग उतने रोग, और जितना योग उतना संयोग, सम्यक योग, जितना भोग उतना रोग। जो जितना भोगी होगा उतना ही वो क्या होगा? रोगी होगा। बोलो हरे कृष्णा। और योग, जितना ही जो योगी होगा उसका भगवान के साथ में उतना ही क्या होगा? संयोग होगा। तो इसलिए ये काल कन्या का जो प्रसंग चल रहा है तो ये काल की कन्या है। तो काल की कन्या तो कहां लेकर के जाएगी? कन्या इसका मतलब इसकी शादी तो हुई नहीं है अभी, है कि नहीं? इसलिए कोई दूसरा है इसका, अभी तो घर किस कहां है इसका? काल के यहां है, मृत्यु के यहां है, तो आपको ये स्वर्ग तो लेकर के जा नहीं सकती है, है कि नहीं? अपने कोई भी व्यक्ति भाई, कोई भी अतिथि आता है, किसी का स्वागत करके करता है तो कहां लेके जाएगा? अपने घर लेके जाएगा। तो काल कन्या का घर अभी कहां है? काल की कन्या है तो मृत्यु ही उसका घर है, मृत्यु लोक उसका घर है, ठीक है ना? तो इसलिए अभी जो है जो भी काल कन्या के
उसमें चल रहे हैं, संपर्क में चल रहे हैं, या आगे वाले आने वाले कल में जो संपर्क में आने वाले हैं, सब कहाँ जाएंगे? मृत्यु के गाल में चले जाएंगे। ये काल कन्या का जो है ये प्रसंग है। तो देखा जाए तो ये काल कन्या जो है ये जरा, या जिसको बुढ़ापा बोलते हैं, किसी को भी अच्छा नहीं लगता बुढ़ापा, लेकिन सत्यता तो ये है, अच्छा लगे या ना लगे, ये अच्छा है या नहीं है, क्या कहेंगे इसको? ये तो आप सभी जानते हैं, संसार में भगवान ने जो चीज बनाई है वो कोई बुरी तो बनाई नहीं है। तो इसलिए बुढ़ापा भी एक अच्छा वस्तु है, एक गॉड गिफ्ट है भगवान के द्वारा, है ये स्वयं हमारे पास, हमारी जैसे किसी के पास में हुनर हो, रूप हो सुंदर, है कि नहीं, धनवान हो, गुणवान हो, बलवान हो, तो ये सब गॉड गिफ्ट हैं कि नहीं है, भगवान के द्वारा दिए हुए उसको उपहार हैं, तो इनको हम बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसी प्रकार ये भी तो गॉड गिफ्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, ऐसा ब्रह्मांड में कोई स्थान है, ऐसा संसार में कोई स्थान है जहां ये नहीं हो? ये भगवान ने सबके लिए दया करके, क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, इसलिए भगवान ने सबको दे करके रखी हैं। कोई ये झगड़ा ना कर बाद में कि जो है कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमें क्यों नहीं मिली, इसलिए इसमें जो है कहीं भी झगड़ा नहीं होता है जन्म मृत्यु के लिए है? तो ये गॉड गिफ्ट है, वास्तव में ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि यदि ये चीज नहीं होगी, आप देखो कुंती माता बोलती हैं कि प्रभु मैंने सुख भी देखा है दुख भी देखा है, लेकिन सुख में मैंने देखा तो है, लेकिन सुख में मेरे को इतना आनंद नहीं मिला, सुख में मेरे को सुख नहीं मिला, लेकिन दुख जो मैंने देखा है दुख में जितना मेरे को आनंद मिला है, क्योंकि दुख में जब भी मेरी आंखें नम होती हैं और मैं गोविंद को पुकारती हूं तो गोविंद कहां खड़े दिखाई देते हैं? मेरे सामने खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए इस संसार के जो सुख हैं क्या है, कुंती महारानी ने स्तुति में एक श्लोक बोला है, क्या है, एदमान मदपमान, कुंती महारानी के श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें उन्होंने श्रुत ऐश्वर्य श्रुति भी श्रीय श्रेय नहीं श्रीय ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एध मान मध अपमान। श्रुत कोई श्रुति धर हो, विद्वान हो, अच्छा गुण है, सब लायक करते हैं, श्रुत श्री रूपवान हो, श्री भी रूपमान हो, और ऐश्वर्य धन संपन्न हो, श्रुत ऐश्वर्य श्री भी एध मान मध अपमान। कुंती महारानी बोलती हैं कि हे प्रभु, हालांकि संसार के लिए अच्छी वस्तु हो सकती हैं सारी चीजें, उच्च कुल में जन्म, ये सारी संसार के लिए अच्छी चीज हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में मैं तो समझती हूं ये जो है आपसे दूर ले जाने वाली वस्तु है, एध मान मदह, ये मान मद ये क्या देने वाली है जीवात्मा को, जहां भी ये सारी चीजें होती हैं या एक चीज होती है वहां उसको क्या हो जाता है, मान, मैं इतने परिवार इतने बड़े परिवार से हूं, इतना विद्वान हूं, इतना रूपवान हूं, इतना धनवान हूं, ये सब क्या है, मेरे को क्या मिलना चाहिए, मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, मदह जिसके कारण वो क्या हो जाता है, मद में आ जाता है, अहंकार की सृष्टि हो जाती है। तो नैव एव अर्थ विधातुम भई त्वाम अकिंचन गोचरा, तो आप तो अकिंचन गोचर हैं, अकिंचन का मतलब जो बिल्कुल निर्मल है, देनहीन है, जो हर समय 24 घंटे आपकी छत्र छाया में रहते हैं, नैव एव अर्थ विधातुम भाई, इन लोगों को आप प्राप्त नहीं हो पाते हैं, इन लोगों से तो आप बहुत दूर रहते हैं। आप किन को प्राप्त होते हैं बहुत जल्दी? अकिंचन गोचर। तो इसलिए कुंती माता बोलती है कि प्रभु ये सारी सुख जिनके लिए हम लालायत हैं, ये दो ओ दो ये दो ओ दो, भगवान भी सुन सुन करके लगता है कि ये लोग इतनी लंबी लंबी लिस्टें लेकर के आते हैं, किसको मैं कितना दूं, लेकिन वास्तव में ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं होगा तो कभी भी हम भगवान के सामने जाकर के आंसू नहीं बहाएंगे। यदि हमारे पास में ये भगवान की गॉड गिफ्ट नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगा, रोग नहीं होंगे या मृत्यु नहीं होगी, कभी भी हम मंदिर में जाकर के खड़े होकर के आंसू नहीं बहाएंगे या पुकार नहीं लगाएंगे, बैठ करके जप नहीं करेंगे। ये तो इन्हीं की मेहरबानी है, इन्हीं की दया है, इन्हीं की कृपा है, ये भगवान ने जो हमें दे दी है, जिसके कारण जीवात्मा हर समय भयभीत रहता है, और भयभीत होने के कारण वो दौड़ता रहता है, कहां तक? भगवान के द्वार तक फिर दौड़ता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हालांकि लोगों के पास में ऐसा नहीं है कि सारी संपत्ति है, फिर भजन क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी भारत की जनसंख्या है कितना है, 125-30 करोड़ के लगभग है। चलो 100 करोड़ हम उठा देते हैं, चलो कोई बात नहीं जी, क्या 30 करोड़ भजन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो हैं बोलते हैं अपश्यताम आत्मतत्व, अपश्यताम आत्मतत्व ग्रहेशु ग्रहमेदिना। सारा संसार तो ग्रहेशु ग्रहमेदिना, घर गृहस्थी में इतना फंस चुका है, ग्रहमेदी बन चुका है, ग्रह 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 ग्रहणिस जाय, ग्रह ग्रह को क्या बोलते हैं, ग्रह ग्रह किसको बोलते हैं, ग्रहणी को बोलते हैं। तो एक ग्रह है, जिसको भी ग्रह लग जाता है ना, वो कैसा हो जाता है, बावला जैसा हो जाता, उल्टा सीधा बकने लगता, उल्टा सीधा कार्य करने लगता। तो ग्रहेशु ग्रह मेदिना, जो भी गृहस्थ जीवन में जो चल रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो सभी गृहस्थी हैं, ब्रह्मचारी भी गृहस्थी हैं, सब ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रहेशु ग्रह मेदिना, जो भी संसार में जो फंसा हुआ है उसको तो ग्रह लग चुका है। किस चीज का ग्रह लग चुका है? तो अपश्यताम आत्म तत्व, आत्म तत्व से वो क्या होता जा रहा है, दूर 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 होता जा रहा है। फिर क्या करता है जी, आत्म तत्व से दूर दूर होता जा रहा है तो सुनो क्या करता है। निद्रया हिनते न तम व्यवाये न च बाबयम दिवाच अर्थ अर्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया हिनते नक्तम व्यवारेण च बाबयः, कैसे ग्रह आत्म तत्व व्यक्ति उसका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, तो बोल रहे हैं निद्रया अर्थात निद्रया निद्रया हिनते नक्तम, तो नक्त बोलते हैं रात्रि को, हिनते बोलते हैं व्यतीत करता है, रात्रि को कैसे व्यतीत करता है, या तो थक करके सो जाएगा और या फिर थोड़ा बहुत जान रहेगी उसमें, पूरी तरह नहीं थका है, तो बोलते हैं व्यवायेन चा बयह, या फिर वो मैथुन कार्य में रत होकर के इस प्रकार जो है रात्रि को गमा देता है, बचा दिन, दिन को कैसे व्यतीत करता है, तो बोलता है दिन दिवाच अर्थ हया राजन कुटुंब भरणेन एव दिवाच अर्थ अर्थे हया राजन, मतलब दिन के समय वो क्या करता है, हे राजन हे परिचित महाराज, दिन के समय ऐसे व्यक्ति का क्या करते हैं, अर्थे हया, अर्थ को कैसे कमाया जाए, ढूंढ ढूंढ करके कैसे घर में लाया जाए, उसकी जो है युक्ति निकालते रहते हैं। किसके लिए भाई क्या करेंगे, दान पुण्य करेंगे, बोला नहीं, वो दान पुण्य कभी नहीं करते, तो क्या करते हैं, कुटुंब भरणे नवा, कैसे मैं अपने कुटुंब को जो है अच्छी तरह से इसका भरण पोषण करूं, इसके लिए जो है सात पीढ़ियों की इनके बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, नाती पंती संती दंती पंती जितने भी हैं सब, इनका कैसे मैं अभी से सारी व्यवस्था कर दूं जिससे इनका झंझट, जिससे अच्छी तरह ये भोग विलास कर सकें, अच्छी तरह से आनंद में रह सकें। इसलिए वो इन सारी चीजों के बारे में, धन कमाने के बारे में वो सोचता रहता। बोलो हरे कृष्णा। तो इसलिए आत्म तत्वम अपश्यतां ग्रह ग्रह मेदिना, तो ऐसे व्यक्ति क्या हैं, यदि ये चर्चा सुखदेव गोस्वामी जो कर रहे हैं, अभी जो चर्चा चल रही है नारद जी के द्वारा और उनको पुरंजन को सुनाई जा रही है, और वास्तव में ये चर्चा जो है आगे से शुरुआत चली आ रही है, ये विदुर मैत्री संप्रसंग चल रहा है आगे शुरू से, तो क्यों सुना भाई, इसमें मन्ना गिन्ना किसी को अच्छा लगता है क्या, ये अच्छा लगता है संवाद, क्यों ये सारी बातें, आप किसी को मंदिर में थोड़ी सी क्लास में करो, थोड़ी सी आप चर्चा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो तुरंत वो सुनेंगे, तुरंत उठ करके भागने लगे, अरे ये क्या बोल रहा है, कोई अच्छी कोई मन के अनुकूल कोई बात सुने हो तब तो सुनी जाए, ये जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु ये सारा रट लगा करके रखिए, तो क्यों ये सारी चीज की चर्चा की जा रही है, क्या सुखदेव गोस्वामी पागल हैं, या विदुर जी ने पूछा होगा तो विदुर जी पागल हैं क्या, या मैं तेरे ऋषि डांट नहीं मार सकते, अरे तुम क्या पूछ रहा है, कुछ रासलीला की चर्चा करो हमसे, अब आइए हमारे पास में, तो है कि नहीं, कर सकते कि नहीं सकते, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता देवहूती इस प्रसंग को जो है उठाती हैं, पूछती हैं अपने पुत्र से पूछती हैं, माता देवहूती बोलती हैं कि हे प्रभु, विरागो ये न पुरुषो भगवान सर्वतो भजवेत, आचक्षु जीवलोकस्य विविधा मम संस्रति, विविधा मम संस्रति, संस्रति सम्यक रूप से श्रुति, मतलब सम्यक रूप से मेरी आसक्ति कहाँ बढ़ती जा रही है, इस संसार में बढ़ती जा रही है, संस्रति आसक्ति कहाँ हो रही है हमारी, संसार में बढ़ रही है, होना तो श्रेय श्रुति होना चाहिए था, श्रेय श्रुति का मतलब ये जो श्रुति है बजाय संसार की तरफ नहीं होकर के किसकी तरफ होनी चाहिए थी, भगवान की तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही है, तब क्या करना चाहिए, तब बोलते हैं जब इस प्रकार की जब चर्चाएं की जाती हैं, आचस्व जीव लोकस्य विविधा मम संस्कृति, लोगों की जो संस्कृति है, लोगों की जो विचारधारा है, लोगों के जो क्रियाकलाप हैं, वो सारे संसार की तरफ हैं, अब इनको मोड़ने के लिए क्या करना होगा, ब्रागो एन पुरुषो भगवान सर्वतो भवेत, भगवान सर्वतो भगवान भवेत, हे प्रभु, संपूर्ण रूप से जब इस प्रकार की चर्चाओं को सुनाया जाता है, जब इन चर्चाओं को बार बार दोहराया जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम अनुदर्शनम, अनुदर्शन का मतलब अनुदर्शन करते रहो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान, ये चैप्टर बंद नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है, इससे क्या होगा, तो बोलते हैं विरागो ये न पुरसो, तभी पुरुष को अपश्यताम गृह मेदी नाम, जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं उनको जो है वैराग कब उत्पन्न होगा है? तब उनको बार बार बताया जाएगा, अरे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, आने वाले समय को देखो। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, बोलते हैं देहा पत्र कलत्रा दिशो आत्म सैन्यसो असस्सु यपि तेसं प्रमक्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यतां पश्यति पश्यन अपि न पश्यति। जब ऐसे व्यक्तियों को तेसाम प्रमक्तो निधनम, निधन निधन मतलब गरीब, वास्तव में किससे गरीब हैं? धन से गरीब नहीं है ये, किससे गरीब हैं? भजन से गरीब हैं। जैसे उस भजन में गाया है, कौन से भजन में गाया है जो महाराज गाते हैं, क्या नाम है वो,
नवयुगेंद्र महाराज गाते हैं,
दौलत के दीवानो सुन लो एक दिन ऐसा आएगा हाथी घोड़े माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली, कृष्ण नाम के राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। धन से गरीब नहीं है, किससे गरीब है? वास्तव में गरीब संसार में कौन है? तो कृष्ण नाम के हीरे मोती जिसके पास में नहीं है वो वास्तव में ही संसार में सबसे बड़ा निर्धन है। लोगों के पास में निधनम मतलब गरीब हैं, किससे गरीब हैं? धन से नहीं है, धन दौलत के दीवानो, धन दौलत तो लोगों के पास में बहुत है लेकिन किससे गरीब हैं? तो बोलते हैं कृष्ण नाम के हीरे मोती, उनके पास में भगवान का भजन नहीं है। क्यों नहीं किया जी भगवान का भजन? इसलिए नहीं किया क्योंकि जो है देहा पत्र कलत्रादिशु आत्म सैन्यसु असस्सु अपि, देह पहले तो जो है शरीर से फुर्सत मिले तब जो है आगे बढ़ा जाए, कहीं जाना होता है तो कम से कम मेरा अंदाज है एक दो घंटे, जो थोड़ा सा भी ठीक ठाक होगा तो एक घंटा तो कम से कम लगाएगा सामान्य में अपने को। कलत्र कलत्र बोलते हैं, फिर आगे जब निकलने का प्रयास करता है तो छोटे छोटे बच्चे, पापा पापा कहाँ जा रहे हैं आप, वह पापा बिल्कुल पिघल जाता है बच्चे की वाणी सुन करके, अरे लाला यहीं जा रहा हूँ, थोड़ा उसमें जा रहा हूँ, कुछ काम से जा रहा हूँ, पापा पापा हम भी चलते हैं, अरे तू क्या करेगा चल करके, अच्छा पापा पापा थोड़ा पैसा देंगे हम थोड़ा जब चल कुछ खा पी लेते हैं तो, हाँ ठीक है ये ले लो। बच्चों की तुतले ये जो वाणी है उसको भाव विभोर कर देती है, बिल्कुल सॉफ्ट बना देती है, मुलायम बना देती है उसके हृदय को, और थोड़ी बहुत जो बचा हुआ है उसकी जो कठोरता, तो आगे चल करके फिर क्या होता है कलत्र कला कला, हालांकि कलत्र एक कलह को त्राण करने वाली है लेकिन होता क्या है वो त्राण तो नहीं हो पाता है, लेकिन पत्नी की जब जो है सुरीली आवाज, और वो भी जो है ऐसे लग रही है जैसे कितनी हमको चाहती है, जब वो आ करके अजी सुनते हो हाँ सुनाओ क्या है, अच्छा मार्केट जा रहे हैं ना, हाँ मार्केट जा रहा हूँ, अच्छा देखो साड़ी भी ले आने का, देखो कितने दिन हो गए, अब देख रहे हैं पड़ोसी की कितने जो है साड़ियाँ रखी हैं, ये जो कलत्र मतलब ये जो आवाज है पूरे दिल दिमाग को जो है क्या करने वाली है, बिल्कुल अपश्यताम पूरा ढक देती है, तो अपश्यताम पश्यताम पश्यम मतलब बाहर की चीजों को नहीं देख पा रहा कि बाहर क्या चल रहा है, मुंड क्या बोलते हैं कूप मुंडक जो कुएं का जो मेढक होता है ना, तो वो जो है बाहर क्या है इसके कुएं से भी कोई ज्यादा कोई बड़ा जलाशय है उसको मालूम नहीं चलता, क्योंकि उससे निकल के बाहर जाए तब मालूम चले ना, तो इसलिए क्या होता है वो कुएं तक ही सीमित रहता है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं देह आपत्य कलत्र आदेशो पहले तो शरीर से ही जो है उसको फुर्सत नहीं है, अभी इसमें जैसे बताया जा रहा है शरीर में कोई रोग हुआ, क्या बोलते हैं, थोड़ी खाल लटकी तो उसको कटवा के खिंचवा के थोड़ा और टाइट करा दिया, सर्जरी करा दी, आंख में हुई तो ये चश्मा लगा दिए, बड़े बड़े फ्रेम वाले, बड़े बड़े कॉस्टली हैं, कान में हुई, प्रभुपाद जी जैसे तात्पर्य में दे रहे हैं, तो क्या कर लगा दिए, मशीन लगा दिया। ये जो सारी बीमारियां हालांकि हमें देखने के लिए हैं, ये बीमारियां पश्चिताम, आप देखो संसार को देखने के लिए बनाई हैं, लेकिन इसमें अपश्चिताम वो क्या होता है, इतना उसकी बुद्धि जो है नष्ट हो जाती है इन सारी चीजों के कारण कि वो बाहर की वस्तु को नहीं देख रहा है। ये भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है, इसको नेचुरलिटी रहना चाहिए, इसको असलियत में देखना चाहिए, इसका अनुभव करना चाहिए। आज ये चश्मा नहीं होता, जब 10 ठोकरें खाते तो भगवान जरूर याद आते, है कि नहीं। आज हमें सुनाई नहीं देता सत्संग में बैठते, जब हमें जो है पश्चाताप होता कि हे प्रभु आज मेरे कान ठीक ठाक से होते तो मैं भी कुछ सुन पाता। ये गॉड गिफ्ट है, ये हमें अनुभव कराने वाली हैं, भगवत मतलब अनुभव कराने वाली है। कुंती महारानी इसलिए तो बोलती है कि प्रभु मैंने सुख का अनुभव किया लेकिन सुख में मुझे आनंद नहीं मिला, लेकिन जब दुख का मैंने अनुभव किया दुख में जितना आनंद मिला, क्योंकि जब भी मेरे को, जब भी मेरी आंखें नम हुई, जब भी कोई समस्या ऊपर आई और मैंने जैसे आपको पुकारा आप मेरे सामने खड़े मिलते हैं, इसलिए प्रभु मेरे को सुख नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कुंती महारानी जो है दुख मांग रही है। दुख बोलती है क्या है श्लोक, विपद संतु ताम सस्वत, सस्वत का मतलब नॉन स्टॉप, एक खत्म मत करो विपत्तियों को, क्योंकि जैसे ही विपत्ति खत्म होती हैं तो फिर हम जो हैं क्या हो जाते हैं, फिर इस संसार में जो है मत हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं संसार में। प्रभु मैं संसार में मत नहीं होने चाहती, मैं संसार में पागल नहीं होना चाहती, यहां तक मेरे पुत्रों में, यदवंशी में, वृषणी वंशी में मेरी जो आसक्ति है उसको भी प्रभु तुम क्या करो, बिल्कुल खत्म कर दो। इसलिए विपदा संतु ताम सस्वत, हे प्रभु सस्वत, बार 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 अगेन एंड अगेन बार बार क्या करो, मेरे को संकट में ही डालते रहो जिससे आप सामने खड़े हो। इसलिए ये जो उपहार दिया जा रहा है भगवान के द्वारा है, काल कन्या, काल ये काल, मृत्यु को भी काल बोलते हैं, भगवान को भी काल बोलते हैं। तो अभी हम जो है भगवान की तरफ तो है नहीं, जहां है उसी की चर्चा करते हैं। काल ये जो समय है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एक तात्पर्य में कि जो महान राजनीतिक जो चाणक पंडित है वो बोलता है कि एक जो समय जो हमारा गुजर गया करोड़ों खरबों डॉलर दे करके भी एक सेकंड हम इसमें से वापस नहीं ला सकते। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं तो क्या करना चाहिए, इसलिए विद्वान मनुष्य को चाहिए इस समय को, इस काल को बड़े ही सोच विचार करके व्यतीत करे। पागल की तरह जो है इसमें कार्य नहीं करना है, बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक कर्म करना चाहिए, नहीं तो ये काल फिर बोलते हैं भगवान कपिल देव बता रहे हैं माता को, हे माता ये जो काल है तस्य जनो नूनम नायं वेद उर्के विक्रम काल्यमानो अपि बलिने बायो रिव घना बली। हे माता इसकी बार बार चर्चा इसलिए करनी पड़ती है कि तस्य एव तस्य जनो नूनम निश्चय ही ये जान लो कि सारा संसार प्राय क्या है, नायम वेद उर्विक्रमः। उरु विक्रम जो भगवान श्री कृष्ण जिनके क्रियाकलाप क्या हैं, उरु हैं, विशाल हैं, संसार का कल्याण करने वाले हैं, लेकिन नायम वेद ये लोग क्या हैं जो संसार में फंसे हुए हैं, ये लोग नहीं जान पा रहे हैं। भगवान का ये जो काल है ये कैसे कार्य करता है, इतना कितनी शक्ति है, इस बात को ये मूर्ख लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नायम नूनम नायम वेद उरुक्रम, नूनम का मतलब होता है निश्चित रूप से, ये बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं हम, ये लोग नहीं जान पा रहे हैं। क्या नहीं जान पा रहे हैं,
तो बोलते हैं काल्यमानो अपि बलिनो,
काल्यमानः अपि बलिनः, काल कितना बलवान है कि उसको कहां फेंकेगा, किस शरीर में डालेगा, किस नरक में फैलेगा फेंकेगा, इस बात को वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मां भगवान बोले कपिल देव देवती से, ये चर्चाएं इसलिए करनी पड़ रही हैं मेरे को क्योंकि ये लोग इतने नूनम प्रमक्त है, इतने लोग संसार में प्रमक्त मतलब पागल, और प्र का मतलब होता है प्रकृष्ट रूप से, संपूर्ण रूप से सारा संसार इस जो है घर गृहस्थी के झगड़े में ही बिल्कुल पागल पड़ा हुआ, उससे आगे सोच नहीं पा रहा, लेकिन उसको नहीं मालूम चल रहा है कि काल जो है कैसे काम कर रहा है, और काल ये कितना शक्तिशाली है कि उस जाकर को कहां फेंकेगा, इस बात को नहीं जान पा रहा है। जैसे वायु इव घनावली, घनावली बोलते हैं बादलों को, घनों को, भयंकर काले काले बादल कभी कभी देखते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि ढक देंगे हमें, लेकिन वो बादल इतने शक्तिशाली बादल भी जब हवा चलती है प्रचंड हवा तो आकाश में कहां छितर बितर हो जाते हैं, फिर देखने से भी उनकी मालूम नहीं चलती है। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, इसलिए इसका सारांश के रूप में, 5 मिनट का सारांश के रूप में हमें जानना चाहिए, ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो नहीं तो नारद जी इतने बड़े स्केल पर जो है, बड़े उस पर जो है चर्चा नहीं करते, क्योंकि हमारे ही कल्याण के लिए। इसके सुने बिना विरागो अपि, बिल्कुल वैराग हो नहीं सकता, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसलिए सर्वप्रथम जो आज तक का जो सारांश है, हर प्राणी को और विशेष करके मनुष्य को, और प्राणी तो जाने दो भाई, वो तो जो भी कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन विशेष करके मनुष्य को क्या होना चाहिए, संयमी होना चाहिए। जो भी व्यक्ति संयमी है, जिन्होंने अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया है, चाहे वो ब्रह्मचारी बनकर के किया हो, या गृहस्थ बनकर के किया हो, या वानप्रस्थी बनकर किया हो, या सन्यास बनकर के किया हो, उसके इतिहास को आप देखो उठा करके, उसकी जो गति है बहुत उत्कृष्ट गति हुई है। कोई भी जो एक इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते जिनकी दुर्गति हुई हो। जिन्होंने भी ठीक से अपने जीवन में अपने मतलब आचरण अच्छा किया है, गृहस्थ जीवन में रहे हो चाहे ब्रह्मचारी जीवन में रहो, जैसे देखो आप जो है स्वयं उदाहरण दिए, जैसे क्या नाम है आपको, वो है क्या नाम है, पितामह भीष्म जब शरीर त्याग कर रहे हैं तो भगवान को बोल रहे हैं कि हे प्रभु आप क्या करो, बोलते हैं सदेव देवो भगवान प्रतीक्षितं कलेवरम यावत इदं हिनोम्यहं, कलेवरम यावत हिनोम्यहं, सदेव देवो प्रतीक्षितं, हे देवों के देव अब आप आ गए हैं, ये भी आप अपनी इच्छा से आए, क्योंकि आपको ये मालूम है कि मैं अब क्या करने वाला हूं, शरीर का त्याग करने वाला हूं, इसलिए आप आए हैं, इसलिए अब आप आएंगे तो आगे मैं ऑर्डर करता हूं आपको। सुनो क्या ऑर्डर कर रहे हैं, पितामह भीष्म भगवान को ऑर्डर कर रहे हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावत हिनोमि अहम यावत कलेवरम हिनोमि, जब तक मैं ये शरीर नहीं छोड़ देता तब तक आप यहाँ करो, क्या करो, प्रतीक्षिताम, यहाँ आप इंतजार करो, मेरे सामने खड़े रहो, अब यहाँ से जाने की जरूरत नहीं। कोई बोल सकता है ऐसे? है मत किसी की? भगवान देखो, कई ब्रह्मचारियों की एक छोटी सी लिस्ट बता देते हैं 2 मिनट में ही। आप देखो, जो भी ब्रह्मचारी, आप कोई भी ब्रह्मचारी को उदाहरण दे दो एक, और उसको देखो कितना उत्कृष्ट है। शास्त्रों में तो हम तो शास्त्रों में जो दिखाई देते, चलो उनका लेते हैं, नारद जी पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, इसलिए जहां भी जाते हैं कोई उनको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा, जहां भी भगवान को याद करते हैं भगवान उनको सामने दिखाई देते हैं। चारों कुमार वो ब्रह्मचारी हैं, वही जो ऐसे कुमार जैसे एक ब्रह्मचारी हैं, भगवत भक्त हैं, इसलिए तो भगवान के धाम में, भगवान के घर में जाकर के भगवत पार्षदों को श्राप दे करके इस मृत्यु लोक में भेज दिया है। थी किसी दूसरे की हिम्मत? और देखो जी, आप आ जाइए चैतन्य महाप्रभु की लीला में, हरिदास ठाकुर को हरिदास ने कहा, प्रभु अब आप यहीं रहिए, इसके पहले कि आप इस संसार का त्याग प्रत्याग करके और जो है अपने धाम में जाए, वो दुख में सहन नहीं कर सकता, मैं चाहता हूं पहले आपसे मैं जाऊं, अब यहीं रहो, आप आ गए हैं तो अभी रुको थोड़ी देर में, मैं अपना काम कर लेता हूं। और उन्होंने क्या किया, महाप्रभु की गोद में बैठ करके जो है और अपने प्राण त्याग कर दिए, सब भगवान के दर्शन करते हुए, और कीर्तन मंडली इतने शिष्यगण थे, भगवान के पार्षद सब उनके सामने दर्शन शरीर त्याग कर दिया। और आगे लीजिए, और भी बहुत सारे देख सकते हैं, कौन है, सबरी लीजिए, सबरी राम में जब शादी हो रही थी, उन्होंने देखा कि उनके पिताजी इतने सारे पशुओं का वध करने के लिए बांध करके रखे हैं, और वो मिनमिना रहे हैं, मैं। सबरी से देखा नहीं गया, सबरी ने पूछा, पिताजी ये सब किसके लिए हैं? तो पिताजी ने कहा, अरे लाली तुझे मालूम नहीं, अरे कल तेरी शादी है, ये शादी में जो है दावत देने के लिए तो इतने सारे हमने मंगाए हैं, बहुत फर्स्ट क्लास दावत देंगे, वो भी क्या जाने तुम्हारे जो है क्या नाम है ससुराल वाले। सबरी का दिल हिल गया, अरे मेरी कारण इतने सारे पशुओं का वध, धिक्कार है ऐसी शादी के लिए। उसी समय संकल्प ले लिया कि मैं ये शादी जीवन में कभी भी नहीं करूंगी, यह इतना जो है जीवात्माओं को मेरे कारण कष्ट हो रहा है, जीवन भर में शादी नहीं करूंगी। उसी रात्रि वो घर छोड़ करके चली गई, और आजीवन सबरी जो है जंगल में रही, तपस्या किया, शादी नहीं किया। उसके लिए जब उनके जो गुरुजी थे, याद नहीं आ रहा है मेरे को, गुरुजी ने जाते समय जब कहा था सबरी से, सबरी तू यही रहना, मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूं कि भगवान, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान श्री रामचंद्र जी यहां तुम्हारे पास में आएंगे, चल करके आएंगे और यहां तुम्हारा आकर के कल्याण करेंगे, तुम्हारा आशीर्वाद देंगे, तुम्हें दर्शन देंगे, तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आप देखो, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी हैं, वो सोच रहे हैं जब भगवान रामचंद्र जी आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं देखो हमारे उस पर आ रहे हैं, लेकिन उनसे ये नहीं पूछ रहे कि भाई मैं आ गया हूं, उनसे पूछ रहे हैं अरे भाई सबरी कहाँ रहती है, सबरी की कुटिया किधर है, तो वो बता देते हैं, अरे वो सबरी, अरे वो तो जो है क्या है मतलब निम्न उसकी है, बहुत मतलब गर्हित, जिसको निंदनीय मतलब इस प्रकार की दृष्टि उनकी थी, अरे उस सबरी की बात करते हैं, अच्छा प्रभु वो उधर है, भगवान जो है सबरी की चर्चा कर रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि देखो सबरी कितनी उच्च कोटि की भक्त है, वो मेरी भक्त है, वास्तव में उसने भजन किया है मेरा, उसने जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, इसलिए भगवान जाकर उनको आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए सिद्धांत के रूप में संयम बरतो, जरूरी नहीं है कितना भी भोग करो, अंत में तो ये दो दिन क्या नाम है, 2 दिन का ये चमन खिला है फिर मिल जाए कुरी कली कली, इसलिए उसमें एक बात चलते चलते हम बता देते हैं, इसलिए सारांश सिद्धांत के रूप में आप सुन लो सभी ठीक से, एक उसमें बताया गया है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात समय में खिली न खिली, मलयागिर की मंद सुगंध समीर, कल प्रात समय में चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली,
कर ले हरि नाम सदा रसना,
कल प्रात समय में तू हिली न हिली। इसलिए जितना हो सके ये समय है, भगवान हमें जो है इस परिस्थिति में डाल करके, बुढ़ापे का मतलब है अभी हमें समय दे रहे हैं, हमें एक और चांस दे रहे हैं कि अभी भी तुम भजन कर लो, नहीं तो कल प्रात समय में हिली न हिली। कल ये प्रात समय देखेगी कि न देखेगी कोई भी कह नहीं सकता। इसलिए कर ले हरि नाम सदा तू रसना, हे रसना हे जिब्या तू क्या कर ले, तू हमेशा अभी से तू हरि नाम प्रारंभ कर दे, क्योंकि यही तुम्हारा कल्याण करेगा और संसार में कोई कल्याण कर नहीं सकता। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है बताओ मैया।
अगले जन्म में श्री जन्म आएगा बोलता है, श्री जन्म क्या खराब है क्या?
श्री जन्म क्या खराब है क्या? माता जी का मतलब सुंदरता क्या खराब है क्या? बिल्कुल खराब नहीं है, यदि उसका सदुपयोग। कोई भी चीज संसार में खराब नहीं है, यहाँ तक कचरा भी खराब नहीं। आप देखें ना जो कूड़ा होता है जहाँ पड़ा होता है, उसको भी जब शादी होती है तो उस दिन जो है, जिनकी शादी हुई कभी ऐसे देखे है, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा परंपरा है कि उसको भी वो पूजने के लिए जाते हैं। जो कचरा घर से निकाल करके बाहर डाल देते हैं, जो बाद में जो खेतों में उसमें फेंक दिया जाता है, उसका भी पूजन होता है। संसार में कोई खराब नहीं है, खराब क्या है? दुरुपयोग उसका खराब है। जो सुंदर होते हैं वो इतना आसानी से बैठते नहीं शांति से एक स्थान पर, अपनी सुंदरता को प्रदर्शित करते रहते हैं वो, इसलिए वो खराब हो जाता है, बाकी तो कोई चीज खराब नहीं है। बोलो हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की गौर प्रेमनंदे।